हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 3 और 4। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूण द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाख सादया, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंध दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, श्लोक नंबर 3। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली हुई इन अमृतमयी गंगा को मेरे साथ साथ पान करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः कवीनाम सुयाद वीरा, क्षमा, अतः कवीनाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, सिद्धि नथार्थी नयति तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण अतः कविना मसुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धिन्यथार्थी नयति तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण अतः कविनामसुयावदर्थ याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धिन्यथार्थी नयति तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। सुखदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पहले श्लोक में बताया, श्लोक नंबर 2 में, शब्दस्य ही ब्राह्मण एष पंथा या नाम भेद्यायति धीर पार्थ है कि इस भौतिक जगत में जो भी वेदों में अलग अलग आनंद प्राप्त करने की वस्तुएं बताई गई हैं उनमें कोई सुख नहीं है, या नाम भेद्यायति धीर, उनमें कोई दम नहीं है, उससे कभी भी आनंद आने वाला नहीं है, बस खाली नाम मात्र का आनंद है, बाकी वास्तविक आनंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परिभ्रमस्तत्र न विन्देतार्थान। सारा जीवन मनुष्य एक जीवन नहीं करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, घूम रहा है, परिभ्रमण करता रहता है परंतु न विन्दते थान, वास्तविक सुख को अर्थ को वो प्राप्त कर नहीं सका, और मायामयी वासनाया शयनम, ऐसे ही बस जैसे हम सपने में बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर ले, महल प्राप्त कर ले, उसके अंदर आनंद प्राप्त कर ले, लेकिन जागने के बाद क्या होगा, कुछ हमारे पास होगा, कुछ भी तो नहीं होगा ना, भले कितनी भी मेहनत करें, तो इस भौतिक जगत का सुख भी सपने के जैसा है, वास्तविक में सुख नहीं है। हम क्योंकि आत्मा है तो आत्मा तो झुलसती रहेगी जब तक उसे वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा, तो ये भौतिक वस्तुएं जो भी है, चाहे जो कुछ भी है, वो हमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कराएगा, आनंदित नहीं करेगा। तो इसी जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो अत्यंत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बता रहे हैं। वे कहते हैं अतः कवीर नामसु यावदर्थ, कवि अतः मना इसलिए, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में तो आनंद है ही नहीं, नाम का आनंद है, इसलिए कवीर जो कवि है, कवि मना बुद्धिमान है, वो नामसु यावदर्थ, वो इस भौतिक जगत की वस्तुओं के अंदर अपने आप को लिप्त नहीं करता। कवि का मतलब होता है उसे जो विवेकी है, वो व्यक्ति जिसे ये पता है कि ये वस्तु ग्रहण करने के योग्य है, वो वस्तु त्याग करने के योग्य है, जिसको जो बुद्धिमान है, जो जानता है कि मेरा कल्याण किस में है, उसको क्या करना चाहिए, नामसु यावदर्थ, नामसु केवल नाम मात्र के लिए, जितना यावदर्थ जितनी आवश्यकता है, मतलब केवल देह निर्वाह के लिए ही, अर्थ का मतलब होता है जो संसार की भौतिक वस्तुएं है ना, उनको वो केवल और केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए ही ग्रहण करता है, मतलब उसको ऐसा पता होना चाहिए कि जितने पैसे से या जितने अर्थ से, जितनी भौतिक वस्तु से, बस मेरी ये जीविका चल जाए, बस मैं जी जाऊं, बस मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ रह सकूं, उतना ही इन भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करना, बाकी आनंद इन वस्तुओं में खोजना नहीं है, बस केवल जीने का। नाथस्य धर्म एकांतस्य लाभो जीवे तयावता, बस इस भौतिक जगत में जो भी अर्थ है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे लिए आवश्यक है, उनको इतना लाभो जीवे तयावता, इतना ही ग्रहण करना है कि हम बस जी सके, हमारा ये शरीर टिक सके, उतना ही। जो बुद्धिमान है वो इन भौतिक वस्तुओं में आसक्त नहीं होता है, बल्कि क्या करता है, अतः कवि नाम सुयावदर्थे, केवल जीव निर्वाह के लिए ही इन भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करता है, लेकिन ग्रहण भी करता है तो भी उसमें भी वो सावधान रहता है, पागल नहीं हो जाता है इन भौतिक वस्तुओं के पीछे। वे कहते हैं स्याद प्रमत्तो व्यवसाय स्याद प्रमत्तो, यानी कि वो सावधान रहता है, उसे फिर भी इन भौतिक वस्तुएं जितने उसने थोड़ी सी ग्रहण भी की है ना जीविका चलाने के लिए, उनको भी वो सावधान रहकर यूज करता है। व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है कि भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुझे खोजना नहीं है इनके अंदर सुख, बस ये मैंने वस्तु ग्रहण की है केवल जीविका चलाने के लिए, जीने के लिए, बस जीने के लिए ही इन भौतिक वस्तुओं का मैंने उपयोग किया है, बाकी उसकी बुद्धि व्यवसाय होती है। क्योंकि कवि होता है ना, उसको पता होता है, उसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया होता है कि आनंद तो केवल भगवत प्राप्ति में है, लेकिन ये शरीर चलाना आवश्यक है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर मुझे क्या करना है, भौतिक वस्तुओं को जितना कम से कम नाम सु यावदर्थ, केवल नाम के मात्र उनको ग्रहण करना है, और उसमें भी सावधान रहना है कि इनमें सुख नहीं है, सिर्फ जीने के लिए। और जीना क्यों है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीना केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए जीना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए। पहले ही बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। वास्तव में यदि जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, अभय चाहते हो, तो बस एक ही काम करो, सर्वात्मा, वो जो भगवान संपूर्ण जीवों की जान है, जो भगवान है, हरि है, उन्हीं के विषय में श्रवण करो, कीर्तन करो, उनके पवित्र कथाओं को श्रवण करो, उनके पवित्र नाम का जप करो और उनकी सेवा करो। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जीना इसीलिए है क्योंकि जीने के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा जो आवश्यकता है वो प्रदान करनी है, और जीना क्यों है, भगवत प्राप्ति के लिए, और उसके लिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा सिद्धि न यतेत तत्र, सिद्धि अन्यथार्थे, अन्यथार्थे का मतलब है यदि ये भौतिक वस्तुएं अपने आप ही जीने के लिए मिल रही हैं, मतलब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, यदि वो मिल रही हैं बगैर मेहनत के, न यतेत तत्र, तो इस को प्राप्त करने के लिए ज्यादा, यतेत मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। यदि अन्यथा ये परिश्रम के बगैर ये भौतिक वस्तुएं मिल रही हैं तो चलो ठीक है, उनको ग्रहण कर लो, ताकि वो वस्तु जितना भौतिक लिहाज से आप इजी रहोगे तो आप भगवत भजन में ज्यादा से मन लगा सकोगे। लेकिन ये तो भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए उनको ग्रहण करने की बात है, बाकी इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने के लिए जीवन नहीं मिला है। वास्तव में मनुष्य शरीर गधों की तरह लेबर करने के लिए नहीं मिला है, सुबह से रात तक बस जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, धन कमाना है, बहुत बहुत परिश्रम। आजकल देखा जाए तो लोगों के जीवन का मकसद ही यही है, उनको लगता यही है कि सुबह उठकर बस मुझे काम पे जाना है, पूरा दिन काम करना है। अपने इतने हार्ड लेबर में वो ये तक भूल जाते हैं कि मैंने खाना भी नहीं खाया है, वो ये तक भी भूल जाते हैं कि मेरा एक घर है, परिवार है, उनको मुझे समय देना है, वो ये तक भी भूल जाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, कोई गधा नहीं हूँ जो सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह काम कर रहा हूँ। वो ये तो, और ये उनको कहाँ से याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना अधिक परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है, समय बहुत मूल्यवान है, और एक एक सांस भगवान ने गिन कर दी है, और एक एक सांस जैसे जैसे गुजर रही है हमारी आयु कम हो रही है। हम कितना खुश होते हैं ना उस समय जब हमें कहा जाता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेकिन क्या इनके कहने से हमारे बहुत सारे जन्म ईयर्स भर जाएंगे। कोई बोले तुम करोड़ों साल जियो, हजारों साल जियो और 1000 साल के दिन भी हजार हो, है ना, लेकिन ऐसे कहने से क्या बढ़ जाएगा? जितनी आयु लेकर आए ना उतनी आयु प्राप्त होगी। आयु नहीं बढ़ेगी बल्कि एक एक क्षण में आयु समाप्त होती है। तो फिर उस आयु का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना है। बस यही जीवन है, इसी जीवन में प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा परिश्रमं तत्र समीक्षमाण, समीक्षमाण मतलब वो व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला है, उसे पता है, जो कवि है, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि व्यवसाय का बुद्धि है, वो जान जाता है कि इस संसार में कुछ भी आप प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम कर रहे हो ना, वो मात्र लेबर है। इस परिश्रम के बाद भी आनंद आने वाला नहीं है, तो इससे क्या फायदा कि हम अपने इतने कीमती जन्म को ये भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए समाप्त कर दें। अपने जीवन को यदि आनंदित करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें उस जीवन में अपने भगवान की सेवा करनी है, अपने भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कथाओं को श्रवण करना है, ताकि मन के अंदर जो मलिनता है ना कि मैं भौतिक वस्तुओं से आनंदित हो रहा हूँ या हो जाऊंगा, ये जो मलिनता है वो समाप्त हो जाए। वो तब होगी जब मन आनंदित हो जाएगा, है ना, जब आप पहले से ही आनंद, भगवान कहते आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सद्वत् स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस तरह समुद्र अपने जल से संतुष्ट होता है और उसके अंदर भले कितनी ही नदियां आ जाएं, वो विचलित नहीं होता है, उसी तरह आप यदि अपने कृष्ण प्रेम से संतुष्ट होगे, अपनी भक्ति से संतुष्ट होगे, पवित्र नाम से संतुष्ट होगे, भगवान के प्रेम के आनंद में संतुष्ट होगे, तो भौतिक वासना आपको उत्तेजित नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी, न काम कामी। इनको अगर आप भगवान के नाम को नहीं लेते हो, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ रहे हो, फिर आप करते रहो परिश्रम पूरा जीवन। ना जाने कितने जीवन से हम परिश्रम तो करते आई हैं, लेकिन इन भौतिक वस्तुओं को कितना भी प्राप्त कर लें, भगवान कहते हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, ये जो काम वासनाएं है ना, ये जो इच्छाएं है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी पूरी करने के बाद समाप्त हो जाएंगी। दुष्पूरेणा नलेन च मतलब जितना जितना अग्नि में घी डालते हो तो भड़कती है ना, उतना उतना आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते जाओगे, भड़केंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हृदय बोलेगा वाह भौतिक इच्छाएं प्राप्त कर करके आनंद आ गया, अब संतुष्ट हूँ। संतुष्टि है नहीं भौतिक वस्तुओं में, केवल दुख बढ़ा हुआ है। तो जो व्यवसाय बुद्धि है, जो जान जाता है इस संसार की हकीकत को, वो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अन्यत्र परिश्रम नहीं करता। सिद्धेन्यथार्थे न यतेत तत्र, वो जान जाता है परिश्रम तत्र समीक्षणा के ये जान गया है कि ये भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने से केवल परिश्रम होगा, बाकी आनंद नहीं आएगा। इसलिए वो क्या करता है, बस उतना ही भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करता है जितना जीने के लिए आवश्यक है। अनुवाद, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि बहुत कम, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि अवांछित मतलब जो बस जिससे आपका न्यूनतम आवश्यकता है, मतलब जो बिल्कुल जरूरी है, उनके लिए खाली प्रयत्न करना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लग्जरियस लाइफ के लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वह व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत धर्म या श्रीमद भागवतम की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं। अब ये भागवत धर्म हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोई केतव नहीं है, उसमें केवल आपके वास्तविक लक्ष्य के बारे में बताया गया। तो वास्तविक लक्ष्य में ये जो भौतिक वस्तु है ना, वो तो बाधा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सब तो समय का अपव्यय है, टाइम वेस्ट लगता है, भक्तों को इन सब चीजों के विषय में नहीं सोचते। सारा ब्रह्मांड या यूं कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। क्या योजना बनाते सब कि कैसे अपने जीवन को, अपने इस मनुष्य शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करें। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है, कहीं पर कंफर्ट नहीं है, आनंद नहीं है और कहीं पर प्रोटेक्शन नहीं है। चाहे आप अपने आप को हजार शीशों के दरवाजों में बंद करके, होता है ना बुलेट प्रूफ, कैसा भी कितना भी प्रूफ होगा, लेकिन फिर भी ये मृत्यु का देवता आएगा, यमराज प्राण लेके चला जाएगा, तो कभी भी आप सुरक्षित नहीं हो और ना ही कभी आनंदित हो। और विकास की किसी अवस्था में भी ऐसा हो भी नहीं सकता है जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामिक प्रगति से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल हैं। श्री प्रभुपाद जी कितनी भी भौतिक स्थिति में आप एडवांस हो जाओ, ना ही अपने जीवन को आरामदेह बना सकते हो। देखो, सुविधाएं आपको आनंद नहीं दे सकती, सुविधाएं आपके जीवन को थोड़ा सा इजी तो कर देती हैं, लेकिन आनंद जिसको कहा जाता है वो इन भौतिक शरीर की भौतिक वस्तुओं से बहुत ऊपर है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कितनी भी विकास हो जाए, कितना भी आप एडवांस हो जाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इस भौतिक जगत में आपको आनंद या प्रोटेक्शन प्राप्त हो। तो जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामिक प्रगति में मोहित है, निश्चय ही पागल है, जो सोच रहे हैं कि अगर इस भौतिक जगत में कुछ और प्राप्त हो जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, या कुछ कोई ये व्यक्ति मुझे मिल जाएगा तो मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो पागल है जो ऐसा सोचते हैं। यह सारी भौतिक दृष्टि केवल सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि है के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो क्या है कि तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया है और मोहने वाले केवल नाम के अतिरिक्त, इनमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। नाम है खाली कि इनके अंदर आनंद है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतएव वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं की को सृजन करने में रुचि नहीं लेता। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो आनंदित हो जाऊंगा, जो जरा भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं क्या है, पहले बताया कि वो तो सपने की तरह है। लेकिन जो सिर्फ नाम की माया जाल मात्र है, जिनका महत्व समुद्र के तरंगों के बुलबुलों से अधिक और नहीं है, बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसीलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनके नाम अक्षुण बने रहे, किंतु वे काल क्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी जो हैं जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो भी हैं, वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? ताकि उनका नाम अक्षुण बना रहे कि भाई इसका नाम हो जाए, भाई उस प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, इसने ये बोला, ये जो भी कर रहे होते हैं ना अपने नाम को, अपने फेम को बढ़ाने के लिए। लेकिन कालक्रम के बाद क्या होता है, इससे पहले भी कई ऐसे राजा महाराजा गुजर गए और जिनका नाम पता भी पता नहीं है किसी को। बहुत सारे मंत्री आए, महामंत्री आए, उनको तो सड़कों पे गोलियों से मार के चले गए, लेकिन किसी को याद नहीं है। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो वो नाम जो है वो अमर हो जाता है। वो चाहे प्रहलाद हो या मीरा, वो चाहे ध्रुव हो या महाराजा अम्बरीश हो या कोई भी हो, उनका नाम कोई नहीं भूलता। आज भी जब उन भक्तों का नाम लिया जाता है तो आदर के साथ दिया जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसी के विषय में बता रहे कि लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षण भंगुर समय की उपज है। सकाम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं। ये वास्तविक ज्ञान हो जाए कि मैं इस भौतिक जगत का हिस्सा ही नहीं हूँ, मुझे इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, मेरी आत्मा को आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आनंदित नहीं हूँगा, तो फिर वो इन भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रखते, उनके लिए यह समय का अपव्यय मात्र है। श्री प्रभुपाद जी बोलते उनको लगता है टाइम वेस्ट है, इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं, वो इन भौतिक वस्तुओं के अंदर बिल्कुल रुचि नहीं रखते। वो कभी ये नहीं देखते कि मेरी ड्रेस को देखकर चार लोग कमेंट करेंगे कि भाई कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, या वो ऐसा अपना हेयर स्टाइल बनाए या फिर कुछ ऐसा। उनको पता है कि ये शरीर जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, इस शरीर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो क्या बोलते हैं, समय का अपव्यय है, टाइम वेस्ट है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, समझना चाहिए हमें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क होना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च कर ले। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं समय बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर एक सेकंड भी चला गया भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने में, टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर करोड़ों लाखों रुपए भी देकर या स्वर्ण मुद्राएं भी देकर वो सेकंड को हम वापस नहीं ला सकते। अतएव ऐसा आध्यात्मवादी जो माया की चुंगल से छूटना चाहता है, उसे यहाँ सचेत किया जाता है कि वह सकाम कर्मियों की बाह्य स्वरूप से मोहित ना हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले अपने लक्ष्य को देखो कि तुम अगर छूटना चाहते हो तो बाकी जितने भी लोग हैं जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो, उन सब बातों से आगे निकलना है। और मनुष्याणाम सहस्रेशु, 1000 में से वो एक बनना है जो सिद्धि की राह पर आगे बढ़ता है, तो उनकी तरह अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना है। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, भौतिक इंद्रियों को आनंदित करके मैं कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, इसलिए ये जन्म क्यों मिला है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि मनुष्य जीवन कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात। आज हम संसार में देखते ना, हर कोई अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाऊं तो मैं आनंदित हो जाऊं, कैसे मैं अधिक से अधिक अच्छा पहनूं तो मैं आनंदित हो जाऊं, कैसे मैं अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल मेरा हो तो मैं आनंदित हो जाऊं, कैसे मैं अच्छे से अच्छे तरीके से ज्यादा अपनी हवस और काम वासना को पूरा करूं तो मैं आनंदित हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है,
ये भौतिक वस्तुएं हमें कभी भी आनंदित नहीं करेंगी, इसलिए इनको तो सिर्फ इतना ग्रहण करना है, अतः कवे नाम सुयावदर्थ, बस जी सको उतना कबूल करना है। बस इसके लिए ये आइटम होना चाहिए, ये आइटम होना चाहिए, ये वस्तु होनी चाहिए, ऐसा मेन्यू होना चाहिए, नहीं बस खा कर पेट भर जाए और तुम अपनी साधना कंप्लीट कर सको, उतना ही परिश्रम कर जाए बस। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भागवतम में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित हुआ है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती है, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, ये भौतिक जन्म मिला ही इसलिए है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। तो जो सभ्य लोग हैं, जो वास्तव में कवि हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं में लिप्त नहीं होना है, अवांछित है, इनके लिए हमें कभी भी बस न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करनी है कि जिससे हम जी सकें, उसी के लिए वो जीता है। तो आगे श्री प्रभुपाद उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं। बुरे सौदे मतलब ये भौतिक शरीर और जीवन के लिए हमें इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है, अतएव मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने जैसे अन्य किसी कार्य में ना लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ शिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि मानवीय जीवन क्योंकि मिला ही भगवत साक्षात्कार करने के लिए है, तो मानव जीवन उसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूज करना चाहिए। इस संसार में जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करो बस के जी सको, और फिर भगवान के उपहार पर आश्रित रहना चाहिए कि भगवान है ना, वो थोड़ी भूखा उठाते हैं, सुलाते तो उस कीड़े को भी नहीं है जो पत्थर के नीचे पड़ा हुआ होता है, उसको भी खिलाते हैं, लेकिन मनुष्य को पता नहीं क्यों विश्वास नहीं है कि वो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, वो अवश्य मेरी, जब तक जीता है ना एक कीड़ा तब तक उसे भोग मिलता है, चाहे वो एक कण खाता है, और इतना बड़ा हाथी जो कि एक मन खाता है, बिल्कुल कभी उसने अपने खाने के लिए परिश्रम नहीं कर किया, कभी भी वो ऑफिस में नहीं जाता, गधों की तरह मेहनत नहीं करता, उसे विश्वास है कि भगवान ने पैदा किया है, वो अवश्य मुझे कुछ न कुछ तो खिलाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा जीवन है, तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा। एक ये मनुष्य है जिसे यकीन ही नहीं आता है कि भगवान ने कुछ न कुछ मेरे लिए योजना बनाई होगी, उसे लगता है जो कुछ करना है मुझे अपने परिश्रम से करना, अगर मैंने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, नहीं भगवान अवश्य सहायता करते हैं। तो भौतिक वस्तुओं के लिए इतना अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने जैसे अन्य किसी कार्य में ना लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के लिए इतना नहीं लगाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाती है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर आध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है। यहाँ बताया गया याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, जो आध्यात्मिक है उसे मन से इस बात पर निश्चित होना है कि ये भौतिक वस्तुएं मुझे कभी भी आनंदित नहीं कर सकेंगी, उनको मतलब हृदय से, क्योंकि वो तो असुर होते हैं जो सोचते हैं आज मैंने इतना प्राप्त कर लिया, कल इससे बड़ा प्राप्त करूंगा, आज इतना इतने सब मुझे हाथ में आ गया, कल और भी ज्यादा धन हाथ हो जाएगा, आज इतने सारे दोस्त हैं मेरे साथ, इतने सारे रिश्तेदार हैं, और भी मैं अपनी प्लानिंग से अपनी इसको बढ़ाऊंगा, ये तो असुरी विचार है। लेकिन जो आध्यात्मवादी है वो उसका मन जो है वो स्थिर होता है, स्थिर होना चाहिए, जिससे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प में रंच मात्र भी नहीं डिगे। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं भौतिक जीवन गुजार तो भी उसको ये पता है ना, निश्चय है ना कि भौतिक वस्तुएं अगर मिल भी जाएंगी तो भी सुख नहीं है, तो वो डिगेगा नहीं। विश्व के इंद्र तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना आध्यात्मवादी के लिए आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि यदि आप आध्यात्मवादी बनना चाहते हो, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो इंद्र तृप्ति कर्ताओं जो लोग का जीवन का लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति है, उनके संपर्क से बचो। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए वो आत्मघाती है, यानी कि तुम्हारा जो रियल गोल है उससे तुम्हें भटका देंगे। आप अपनी संगति को चुनो कि जिसके साथ हम रहते हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर वो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे रहे ना तो वो तुम्हें खींचेंगे, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। वो तुम्हें बताएंगे ठीक है तुम माला करते हो, तुम भक्ति करते हो, ठीक है, लेकिन ये भी तो जीवन है, ये जो सोशल लाइफ है उसको कैसे छोड़ सकते हो। आप अच्छे से जियो, खाओ पियो, मजे करो, कभी सिनेमा चलो, कभी यहाँ चलो, कभी वहां चलो, कभी इस तरह, इसके लिए मिला नहीं है जीवन। अपने जीवन के एक एक पल को हमें बहुत ही सावधानी से खर्च करना है। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समझने की बात है कि विश्व इंद्र तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना आध्यात्मवादी के लिए आत्मघाती है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। आध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्त कामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब नहीं मिले थे जब वे महान राजा थे, राजा के रूप में शासन कर रहे थे। आध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो राजा हैं उनको जाहिर सी बात है ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको इन समस्त वस्तुओं से विरक्त होना है, लेकिन उसके लिए मेंटली शुरू से ही प्रिपेयर होना है कि इन भौतिक वस्तुओं में आनंद है नहीं, अभी मुझे क्या करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन आसक्ति नहीं है इन वस्तुओं में, ग्रहण उतना ही करना है जितनी की आवश्यकता है, परिश्रम नहीं करना है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। और आध्यात्मवादी जो है, मतलब जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद आध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में, कि वो किस तरह से अपने जीवन को गुजारता है। क्योंकि अभी इस श्लोक में क्या बताया, सिद्धि यथार्थे नयते तत्र, कि उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, जो बस बगैर परिश्रम के संसार में मिल जाता है ना उसी पर गुजारा करो बस, जो ज्यादा तकलीफ नहीं, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े और आपको मिल जाए बस उसी पर गुजारा करो, और एक्स्ट्रा अगर आपको कार्य करना है, परिश्रम करना है, तो किसके लिए, भगवत प्राप्ति कर ली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है ना कि बिना परिश्रम के तो संसार में कुछ मिलता ही नहीं है। जाहिर सी बात है इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तो हमें परिश्रम करना पड़ता है, तो वो तो समय जाया हो रहा है ना हमारा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए। तो फिर जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को न्यूनतम, यानी बिल्कुल न्यूनतम बोला ना पहले, के नामासु यावदर्था, केवल नाम मात्र के लिए ग्रहण करना है, तो किस तरह से ग्रहण करना है बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। आज की मानव सभ्यता को इन सब शिक्षाओं की आवश्यकता है कि किस तरह से एक एक अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए हम अपने जीवन को व्यस्त कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का अपव्यय है। तो यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ही सुंदर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं,
सत्यं क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि युपभर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूले सत्यं क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि युपभर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै सत्यं क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि युपभर्हणै किं सत्यं जलौ किं पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै
सत्यं क्षितौ। सत्यम का मतलब होता है यदि आपके अधिकार में है, क्षितौ क्षितौ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी यदि है आपके पास, किम कशिपो प्रयासे, कशिपो कहते हैं बहुत ज्यादा खाट हो, पलंग हो, बेड हो, बेड़े मतलब सोने के लिए यदि पृथ्वी है तो फिर बड़े बड़े पलंग बनाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने प्रयास है भी ना, वो बहुवचन में कह रहे हैं कि एक छोटी सी काट ले ली उसके ऊपर आके अब सो गए, ऐसा नहीं होगा। आज की लग्जरियस जो लाइफ है उसमें क्या है, आपका बेड किस डिजाइन से होना चाहिए, पहले बेड की डिजाइन होगी, उसके अंदर किस तरह से ना वो फोम लगा होगा, किस तरह से ऊपर से इसको डेकोरेट किया जाएगा, बेड के अंदर क्या क्या आवश्यकता है, नीचे इसके ड्रॉर्स होने चाहिए, ऐसा बेड होना चाहिए और इतना कंफर्ट होना चाहिए, इसके ऊपर है ना 10 इंच का मल्टीफॉर्म का गद्दा होना चाहिए, वो स्प्रिंग वाला होना चाहिए, कभी वाटर वाला होता है, कभी ऐसा होता है बेड का जो ऊपर मैट्रेस होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जब उसके ऊपर सो तो एकदम अंदर आपको ऐसा लगे कि किसी की गोद में सो। तो इतना इतना प्रयास, अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि सोना ही आवश्यक है ना, सोना ही है ना आपको, तो सोने के लिए यदि पृथ्वी है तो इतने सारे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे पशु पक्षी हैं ऐसे जो जमीन पर सो जाते हैं, है ना, उनको कभी भी गद्दे की आवश्यकता नहीं हुई, कभी भी पलंग की आवश्यकता नहीं हुई है, और इतना साउंड स्लीप वो करते हैं, इतना सोते हैं, सुख से सोते हैं कि जितना कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति अपने बेडरूम में इतना कंफर्ट बनाता है उसके ऊपर उसको सुख नहीं आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सुख किस में है। इस भौतिक ये बेड जो है आप पैसे से पलंग तो खरीद सकते हो परंतु नींद नहीं खरीद सकते। तो यदि सोना ही है तो फिर उसके लिए ये फालतू वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। बस कहीं पर भी आपके घर में कहीं पर भी जगह है, आप उधर कोने में सो जाओ, रात को सोना है, सुबह उठ के भगवान की भक्ति करनी है, और पूरा दिन यदि हम लोग परिश्रम करेंगे, नाम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे ना, और अपने कर्तव्य पूरे करते करते रात जब होगी ना तो फिर इतनी परिश्रम वाली नींद जो आएगी ना, वो इतने जो धरती पे आ जाएगी ना, उसके लिए बेड और गद्दों की जरूरत नहीं है। वो तो आज अपने आप को हमने इतना इजी कर दिया है, इतना कि नींद आती नहीं है, भले बड़े बड़े पलंग होते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर तो बता रहे हैं कि जब सोने के लिए जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता है, सोना ही है ना, तो जमीन पे ही सो जाओ, और भी पलंग पे सोने से रोग बढ़ेगा, आनंद नहीं आएगा। उसके बाद कहते हैं बाहो स्वसिद्धि युपबर्हणै किम, बाहो स्वसिद्धि, बाहो कहते हैं अपनी आर्म्स को, अपनी बाहें हैं, दो बाहें हैं, स्वसिद्धि वो आत्मनिर्भर है, उसके लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, आपके अपने शरीर में भगवान ने लगा कर दे दी है, और अपबर्हणे तो फिर
आपको सोने के लिए तकिए की क्या जरूरत है। दोनों जब भगवान ने दो हाथ दिए हैं तो उनको जोड़कर सर के नीचे रखो, सो जाओ, है ना। उसके लिए तकिए की क्या आवश्यकता है। सुखदेव गोस्वामी हमें जीना सिखा रहे हैं कि जिन जिन वस्तुओं के लिए मर रहे हो ना, आज तो तकिए भी इतने महंगे महंगे 4,000 का एक तकिया लेकर आते हैं कि उसके ऊपर है ना, क्या ये इतनी कंफर्ट नींद आती है। फिर दूसरी जगह पर जाएंगे तो पत्थर रहे होंगे कि वो वाला मुझे मेरा तकिया है उसी पे नींद आती है, क्या करूं। तो बोला इनकी चीजों की क्या जरूरत है, वास्तव में फालतू है ना। आपको भगवान ने जमीन दी है, जमीन पे सो जाओ और ये दो बाहें जो दी है उनका तकिया बना के सो जाओ ताकि जल्दी से नींद खुलेगी भी। अब इतनी कंफर्ट जो तुम लोग अपनी लाइफ बना दी है ना, उसके लिए तो तुम्हारी मंगल आरती मिस हो रही है ना। इतना ब्लैंकेट सॉफ्ट सॉफ्ट होता है और इतना बेड कंफर्ट होता है। रात को तो जागते हैं मोबाइल में देख रहे होते हैं 2-3 बजे तक कि किस किस का मैसेज आया और किससे चैटिंग कर रहे हैं, और फिर 2 बजे जब अभी ब्रह्म मुहूर्त होने वाला होता है ना तब सोना शुरू करते हैं और पूरा सूर्य पूरा जो सूर्य उदय हो जाता है ना असुरों की तरह फिर जागते हैं। तो ये सब हमारी अपनी ये कंफर्ट लाइफ को जितना हमने सुविधाएं दी हुई है तो बोला इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करो फर्श पे सो जाओ और दोनों हाथों को मिलाकर उसका तकिया बना दो। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे ना वैसा करते भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने अभी मेरे को आप बोलोगे आप अपनी लाइफ को देखो और ऐसी बातें, मैं तो सुखदेव गोस्वामी के शब्द बता रही हूँ। उन्होंने ये सब प्रैक्टिकल किया है, उनको पता है कि भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं है और वो जो बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। वो तो पैदा होते ही अपने घर की तरफ नहीं देखे, वेद व्यास जी जो समस्त वेदों के रचयिता हैं, जिन्होंने सब सकाम कर्म लिख दिया कि इससे ये प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा, वो सारी चीजें छोड़कर निकल गए और फिर ये भी नहीं सोचा मैं जा रहा हूँ तो मुझे कोई खाना खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, उधर मैं जा रहा हूँ तो कोई मुझे कोई सुविधा प्राप्त होगी नहीं प्राप्त होगी, निकल गए। और अब वो हमें बता रहे हैं कि जिन चीजों में तुम आनंद ढूंढ रहे हो ना उन चीजों में आनंद नहीं है। हमारे शरीर में ही भगवान ने वो वस्तुएं दे दी हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आगे कहते हैं सत्यं जलो किम पुरुधान पात्र्या। सत्यं जलो, हमारे शरीर में भगवान ने एक अंजलि रखी है। अंजलि मतलब एक शरीर में एक बर्तन फिट किया है कटोरी के जैसा, इसको बोलते हैं अंजलि। जिसे इसको जैसे भी हम बनाना चाहे बन जाता है। अगर हमें जल पीना है तो हाथ जल की तरह कटोरी जैसा बन जाता है, अगर हमें रोटी पकड़नी है तो रोटी पकड़ने के लिए प्लेट जैसा बन जाता है। तो आपके शरीर में एक बर्तन फिट किया हुआ है। तो यहाँ पर बताया सत्यंजलो किम पुरुधान्न पात्र, फिर दूसरे इतने सारे अन्न पात्रों की यानी बर्तनों की क्या आवश्यकता है। आज मनुष्य प्रॉब्लम यही है, जो जिन चीजों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है ना, सोने के लिए इतना गद्दा होना चाहिए, बेडशीट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तकिए होने चाहिए, उनके कवर्स होने चाहिए, और बर्तनों ने तो जान का अजाब बना दिया है। इतने इतने बर्तन हम रखते हैं और फिर उसमें खाते हैं, फिर हम लोग को ये जब सुबह होती है या रात होती है तो देखते और इतने सारे बर्तन, आज काम वाली बाई नहीं आई तो मर जाऊंगी, है ना। इतने सारे बर्तनों की बोलते आवश्यकता क्या है, इतने सारे बर्तनों को पहले आप खरीदोगे उसके बाद है ना उसको खराब करोगे खाने के लिए, खाके फिर मांजने के लिए परेशान हो जाए, कितना कितना टाइम वेस्ट होगा। हाथ से बस हाथ में पकड़ के खा लो जल्दी से और अपना काम करो, बस वास्तविक जीवन गुजारो, वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक जगत में आए थे ना तो वो भी ये सारी परिश्रम, जब जाते थे माता यशोदा उनको एक मतलब पोटली में प्रसाद बांध के देती थी, वहां पर कोई है ना डिस्पोजेबल प्लेट और स्पून लेकर नहीं जाते थे, बस वो सब वो खोलते थे अपना और उसी हाथ में पकड़ के खा लेते थे। फिर भगवान क्या करते थे, जहां पर बैठे होते थे ना वो पत्थर की तरह उसी से ऐसे करके साफ कर देते थे अपने हाथों को और यमुना में स्नान कर देते थे। मतलब इतनी आवश्यकता ही नहीं थी इतने सारे बर्तन इतने सारे ना इंतजाम करने की। तो यहाँ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आपको भगवान ने अंजलि दी हुई है तो इतने सारे बर्तन रखकर क्यों अपने ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनके प्रति अपना परिश्रम कर रहे हो। और आगे की लाइन बहुत जबरदस्त बताई है, हम लोग को समझनी चाहिए। जो हम बहुत ज्यादा ड्रेसेस के लिए परेशान होते हैं ना उसके लिए कहते हैं दिग्वर कला दो
सति किंदुकूले दिग्वल कला दो। यदि आपको शरीर ढकने ढकना ही है ना, वस्त्रों का क्या काम है कि शरीर ढकना है, तो शरीर तो वृक्ष की छाल से, केले के पत्तों से ढक दो। बस शरीर को आज अगर हम देखें तो एक मनुष्य का 99% टाइम इस सोच में गुजरता है कि मैं क्या पहनूं कि मैं बहुत ही सुंदर लगूं, मैं ऐसा क्या पहनूं कि सबसे डिफरेंट होना चाहिए, मैं ऐसे वस्त्र पहनूं कि सब लोग मुझे ही देखें, मैं आकर्षित करूं, मेरे वस्त्र जो है ना वो सबको आकर्षित करें। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना टाइम वस्त्रों के ऊपर खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये जो शरीर है वो वैसे ही आत्मा का वस्त्र है, तो उस वस्त्र को बस तुम किसी भी चीज से, साधारण कपड़ों से ढक लो ना, उसके लिए इतना फैशन डिजाइनिंग सोचने की क्या जरूरत है। दिग्वल कला सत्य किम दुकूले, यहाँ दुकूले कह रहे हैं के धोती वस्त्र या ना इतने सुंदर सुंदर कपड़ों की क्या जरूरत है, तुम्हें अपना शरीर ही तो ढांपना है, तो कुछ सिंपल से भी मतलब केले के पत्तों की छाल यहाँ पर बताया गया कि उससे भी शरीर को ढांका जा सकता है। आखिर जरूरत क्या है इतने सारे डिजाइन के कपड़े सिलवाने की, उसके लिए सबसे पहले फैब्रिक की जरूरत होगी कि भाई पहले ऐसा हो जो पहले नहीं हो, नया कुछ नया जो मार्केट में आया है वो वेरायटी चाहिए, एडवांस चाहिए, और उसको सिलवाने के लिए टेलर के पास जाओ, टेलर भी हजारों रुपए की सिलाई लेगा। ये सब करने में बेकार जीवन नाश हो रहा है वास्तव में। बोले ये सब करने के लिए तुम्हारा ये मनुष्य जीवन नहीं बना, वास्तव में हमको संसार के भोगों को कम से कम ग्रहण करना है, यानी कि इतना इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कार्य अधिक करना। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो बहुत बड़े साधु संन्यासी थे जिन्होंने ये सब वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने हम जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सुविधाओं जनक जीवन गुजारते ना, उनसे अधिक भजन किया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो इतने बड़े प्रधानमंत्री थे, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आए और इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी सारी भगवान की जो लीला स्थलियां उनकी खोज की, आज तक हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी ने कोई भौतिक वस्तु को ग्रहण नहीं किया, अकेले चले गए खाली हाथ वहां पर अमेरिका में और इतना सारा प्रचार किया, इतने सारे शास्त्रों का निर्माण किया, आज तक हमारे जीवन यदि सुधर रहे हैं तो उनके कार्यों की वजह से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये भौतिक वस्तुएं हमें किसी भी स्थान में सुख नहीं दे सकती हैं, जब हम इनको प्राप्त करने का परिश्रम करते हैं तो दुख, और जब इनका भोग करते हैं तो भी दुख ही मिलता है, तो फिर इसलिए इसके लिए आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर बताया जाता है कि मशीन वही अच्छी मानी जाती है जो कम से कम अधिक से अधिक चले और कम से कम पेट्रोल मांगे, है ना। तो उसी तरह से मनुष्य भी भगवान को वही अच्छा लगता है जो कम से कम भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करके अधिक से अधिक भजन करता है, अधिक से अधिक प्रचार करता है। तो यहाँ देखें हम भौतिक जितने भी जानवर हैं वो कभी भी इन वस्तुओं के लिए परेशान नहीं होते, ना कपड़ों के लिए, ना ही बर्तन के लिए, ना ही सोने के लिए, पलंग के लिए, ना ही तकिए के लिए, इन चीजों के लिए। जानवरों को भी पता है इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आज का मनुष्य केवल इन्हीं के लिए मर रहा है और अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुवाद देखिए, जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चार पाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह के का प्रयोग करके कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। हमने अपने जीवन की आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि अब केवल ये आवश्यकताएं ही पूरी करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बढ़ गया है। तो बोला ये सब जरूरत नहीं है, ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य
फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है? यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की उपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करे। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जानवर इन चीजों के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, फिर भी वो स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मनुष्यों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि कैसे अधिक से अधिक सुविधामय जीवन गुजारो। लेकिन यहाँ पर ये भी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मतलब नहीं है कि अब हम मनुष्य जो है वो जानवरों की तरह जीना स्टार्ट कर ले, न खाए न कमाए न बनाए न पहने। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे और मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे, और संस्कृति शिक्षा तथा नैतिक की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। उसको पता होना चाहिए कि क्या वस्तु मेरे लिए आवश्यक है, कैसे जीना है, किस तरह से मुझे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो भौतिक वस्तुओं के लिए यदि वो उत्सुक रहेगा तो कब बढ़ेगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कब आत्म साक्षात्कार करेगा? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे पता होना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? कला तथा विज्ञान के लिए, कविता तथा दर्शन के लिए। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदत्त किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही करना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए हुए संबंध की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? अपने जीवन का निर्वाह करके केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में संभव नहीं है, मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशील की नरक निरर्थकता का बोध होना चाहिए। पता होना चाहिए कि भौतिक वस्तुएं ये परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति है और इसका कोई भी अर्थ नहीं है। निरर्थकता मतलब उसको कोई भी अर्थ है ही नहीं, सब निरर्थक है, फायदा नहीं है इसका कुछ भी। इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधीर पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो ब्रह्म है, और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल एडवांस जो जनरेशन है वो क्या सोचती है कि अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, यही सभ्यता है, यही सोशल लाइफ है, यही जीवन है, यही जीवन का वास्तविक मकसद है, लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करें और अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाले जीव माया के पाश में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राज प्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च प्रदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभूत ग्रंथ छोड़कर गए हैं, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे। यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि वो एक वृक्ष के नीचे भी सेटिंग नहीं बना देते थे कि भाई ठीक है यहाँ पर मैं एक सेटिंग बना देता हूँ ताकि मैं रोजाना आके यहाँ पर पत्ते वत्ते सेटिंग करके यहाँ पर आके सो जाऊं। नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं देखो, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे एक रात ही बिताते, वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी दो रात भी नहीं बिताते थे, तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की तो बात ही क्या कोसों दूर रही। तो भी उन्होंने हमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाओं सहायक नहीं बनती हैं, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है और इसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया गया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मत सोचना कि भौतिक वस्तुएं जब ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगी तो तुम आसानी से भगवत प्राप्ति करोगे। नहीं, आसानी से भगवत प्राप्ति करना ही ऐसे भौतिक वस्तुओं के द्वारा नहीं है, वो तो आपकी निष्ठा के ऊपर है। जब आपके अंदर यह निष्ठा हो जाएगी, जब आपकी बुद्धि इतनी व्यवसाय हो जाएगी कि आप इन भौतिक वस्तुओं में कभी भी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते, इन भौतिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, सुख यदि है तो केवल भगवान के नाम में है, भगवान के चरणों की सेवा में है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में है, भगवान के पवित्र ज्ञान का प्रचार करने में। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तब आनंद आएगा। इसीलिए तो बताए यहाँ पर कि हमें गृहस्थ जीवन के बाद क्या करना है, स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करना है, करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यास नहीं होता है तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, इसके वांछित सफलता इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। श्री प्रभुपाद जी बोलते धीरे धीरे हमें इसके लिए अभ्यास करना चाहिए कि आगे चलकर हमें इन सब भौतिक वस्तुओं को त्यागना है। यदि इन सब चीजों की हमें आदत हो जाएगी, इतनी लग्जरियस लाइफ की आदत हो जाएगी, इतनी फैसिलिटीज की आदत हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रारंभ से ही भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने हृदय में आकर्षण नहीं पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के कहने का आशय ये नहीं है कि हम कोई भी भौतिक वस्तु को उपयोग ना करें। सुखदेव जी के कहने का अर्थ है कि जीवन में कम से कम संग्रह करना चाहिए। संग्रह नहीं होना चाहिए, ये भी जुटाओ, वो भी जुटाओ, ये भी करो, वो भी करो, इसके लिए क्या। अतः कवि नामसु यावदर्था, भौतिक वस्तुओं का केवल उतने के लिए परिश्रम कर सकते हैं जितने के हमारे लिए आवश्यक है। बाकी जो आसानी से मिल जाए, सिद्धि अन्य अर्थार्थे न यते तत्र परिश्रम, खुद ब खुद जो आसानी से मिल जाता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन क्यों मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए है। तो गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ तो संग्रह करना होता ही है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो अतिथि होते हैं, ये होता है, लेकिन उसके लिए भी इतना नहीं कि इसी में ही सारा समय वेस्ट कर लेना चाहिए। भजन के लिए स्पेशल समय होना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं लोग क्या बोलते हैं कि ये भौतिक कार्य इतने हैं, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमें भगवान के भजन के लिए समय नहीं मिलता। तो कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा मनुष्य जीवन इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए खाली नहीं मिला है, बल्कि अपने वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात करने के लिए मिला है। तो उसी के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए स्पेशल समय जो है वो रिजर्व करके रखना चाहिए कि नहीं, और कोई काम रह गया, और कोई वस्तु रह गई तो भी कोई बात नहीं, जी तो रहे हैं ना, जब तक जिएंगे तब तक भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिएंगे
तब तक भागवत श्रवण करना नहीं छोड़ेंगे, इसी से हमारी सिद्धि है, इसी से हम अपने मनुष्य जीवन को सक्सेस कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।